Hare Krishna. साढ़े छह बजे यहाँ आरती शुरू हो जाएगी तो आज तो क्या छोटा प्रोग्राम होगा केवल। मैं समझा था कि आप सब कल जा रहे हो। कल कौन कौन जा रहा है आप में से? कब जा रहे हो? और 17 तारीख को कौन कौन जा रहे हैं? काफी रशियन भक्ति कल जा रहे हैं। भाभी आपकी दर्शन के बाद मुझे रशियन भक्तों को दर्शन देना है 2-3 घंटों के लिए। पंखा ऊपर का बंद कर गए। नमः विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने रामते अर्जते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादेशकारिणे Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Advaita Radha Shiva Shadi Gaura Bhaktavinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Shadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Radha Madhava Radha, Madhava Radha. Hare Bhagavan, Hare Bhagavan, Hare Bhagavan, Hare Bhagavan. Hare Bhagavan. जय ओम ईश्वर भजवाएंगे सबे भक्तिविनंद स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा महाधव की, श्री श्री पंचतत्व की, और ग्लोरी श्री समृद्ध बोली, और गोई समृद्ध बोली, और गोई समृद्ध बोली, और श्री गुरु एंड श्री गुरंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाक्य चक्षुर्मीलितं। हरे कृष्ण। समय का अभाव है क्योंकि 6:30 बजे आधे घंटे में आरती शुरू हो जाएगी, आगे कीर्तन शुरू हो गया है और पूरा सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण। चार लोगों परिक्रम अच्छा लगा। श्री पापा जी को जैसे आप जानते हो, भक्ति सिद्धांत जी ने आदेश दिया था कि पश्चिम देशों में जाकर कृष्ण भक्ति की स्थापना करें, और प्रभुपाद जी ने पहले तो पहले प्रभुपाद जी ने अमेरिका में 15-20 मंदिरों की स्थापना की, कनाडा में। फिर प्रभुपाद जी की इच्छा हुई कि मायापुर धाम में मंदिर बनाना चाहिए, तो उस समय ये पूरा इलाका लगभग जंगल था। जो गुड़िया मठ के मंदिर हैं ये तो थे, और पहले जैसे आप जानते हो जब मंदिर के अंदर आते हो तो शुरू में वो भजन कुटीर है जहाँ 24 घंटे कीर्तन हो रहे हैं, तो वो कुटिया है जहाँ की प्रभुपाद पहले रहे थे। तो पहली बार प्रभुपाद आए थे मायापुर धाम में, जब कोई सुविधा नहीं थी, तो प्रभुपाद जी उस कुटिया में रहे थे। और ये जो लोटस बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये था इधर की पहली बिल्डिंग, और प्रभुपाद जी ने फिर ये मायापुर वृंदावन फेस्टिवल शुरू किया, जिसमें कि गौर पूर्णिमा के संबंध में हमारे इस्कॉन के भक्त आते हैं भारत में, मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। और जब पहली बार ये उत्सव हुआ था 1973 में, तो कहीं 50 डिवोटी आए थे सारे विश्व से इस फेस्टिवल के लिए, और आस्ते आस्ते ये बढ़ते गया। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ सिर्फ परिक्रमा में ही थे लगभग 5,000 से भी ज़्यादा, 3,000 भक्त बंगाली पार्टी में थे, फिर हिंदी पार्टी, फिर रशियन पार्टी, फिर कौन सी इंटरनेशनल। और मेरे ख्याल से थोड़े सालों में एक चाइनीज पार्टी भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी भक्तों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और तो इतना मैं जरूर कहूँगा कि मायापुर मंदिर का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। हालांकि 4 पार्टीज हैं, पहले 2 होती थी, इंटरनेशनल और बंगाली। मेरे ख्याल से प्रसाद सब कुछ ठीक समय सब जगह पहुँचा है कि नहीं। असल में इस समय कम भक्त आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ और रहने की जगह नहीं है। जितनी जगह है सब 100% फुल है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो मंदिर है बड़ा, टेम्पल ऑफ वैदिक अंडरस्टैंडिंग, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है कि नहीं। भगवान नित्यानंद की इच्छा थी कि इस स्थान में बड़ा सुंदर मंदिर बने। हमारे आचार्यों ने इच्छा प्रकट की थी क्या कैसा अद्भुत मंदिर बनना चाहिए जिसके दर्शन लेने के लिए सारे विश्व से लोग आए। और जब प्रभुपाद पृथ्वी पर थे तो प्रभुपाद जी ने भूमि पूजा भी की थी उस मंदिर की। तो वो जो स्थान था अलग था। पर यहाँ बंगाल में एक बड़ी समस्या ये है, क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट राज्य है तो हमारे ऊपर काफ़ी बंधन हैं। आप यहाँ ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते, ये लैंड जोनिंग बदल नहीं सकते। अगर सुविधा होती तो यहाँ इसका अंदर 10,000 भक्तों के लिए रहने के स्थान बनाने को तैयार है। तो पिछले साल भूमि पूजा की थी और प्रभुपाद जी ने अमरीश प्रभु को खास आदेश दिया था कि आप ये मायापुर का मंदिर बनाओ। और अमरीश प्रभु बहुत प्रयास कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। ये जो मंदिर होगा एक रूप से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। और जो टेंपल हॉल है केवल उसमें 10,000 भक्तों के लिए बैठने की जगह होगी, 10,000 भक्त आ सकेंगे। काफी बड़ा टेंपल हॉल है। खैर मंदिर बनने में समय लगेगा, पिछले 1 साल से काम तेजी पड़ गया है और अगले 1-2 साल भी तेजी से जाएगा। पर हमारा इरादा यह है कि 2014 गौर पूर्णिमा के समय पंचतत्व और राधा माधव को नए मंदिर में शिफ्ट करें। और देखो ये प्लान है, हो पाएगा नहीं, भक्तों पर निर्भर है, पर प्रयास कर रहे हैं। पर वो पूरे मंदिर को तैयार होने में और 6-7 साल तो लगेंगे। उसके साथ एक बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेनेटोरियम भी बन रहा है वहाँ, जिसमें जो वैदिक व्यू है प्लैनेट्स का, सोलर इक्लिप्स, सोलर सिस्टम का, सब बिल्कुल मॉडर्न तरीके से दिखाया जा रहा। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचि जगत नगराधिग्राम सर्वदा प्रचार मोड़ना, कि विश्व के कोने कोने में यह हरि नाम फैलेगा। और आज आप खुद देख रहे हो अपनी आंखों से कि ये सत्य निकला है। ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं उनकी भविष्यवाणी थी। हमारे जो गौड़िया वैष्णव भी थे वो सोच रहे थे कुछ समय पहले तक कि हाँ ये महाप्रभु की भविष्यवाणी तो है, तो लगता है ये सफल नहीं होगे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत देवी ने भी कई भक्तों को भेजा था विदेश में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, वो ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था क्योंकि गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है अगर प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त हो सकती है। और प्रभुपाद जी के प्रयास से यहाँ सारे विश्व में कृष्ण भक्ति फैल रही है। मॉस्को में भी एक बड़ा सुंदर स्थान प्राप्त हो गया है, स्थान प्राप्त हुआ था कोई 7 साल पहले, पर रशियन चर्च के ऑपोजिशन के कारण हम आगे बढ़ नहीं सके। पर हालांकि चर्च का पूरा भारी ऑपोजिशन था और रशिया में चर्च का सरकार के ऊपर काफ़ी प्रभाव है, जब भी भगवान की दया से अब हमें पूरी परमिशन मिल गई है मंदिर शुरू करने के लिए, और जून के महीने में हम लोग भूमि पूजा कर रहे हैं और नए मंदिर का कार्यवाहन भी शुरू कर रहे हैं, वो भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर होगा। तो अगर हम पवित्रता का पालन करें और आगे बढ़ें तो आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। अब एक हफ्ते के लिए आप भक्त बड़े उत्साहित है, कितने दिनों का आपको यहाँ आया, 10 दिन। ये जो परिक्रम उत्सव है ये जो उसका महत्व क्या है, प्रभुपाद जी ने उत्सव शुरू किया था इस भावना से कि भक्तों को साधु संग मिले। जैसे आप पिछले एक हफ्ते उन स्थानों में गए जहाँ की भगवान ने अपने दिव्य लीला प्रकट की थी, इस ये हम कर पाए क्योंकि ठाकुर भक्तिनो जी ने नवदीप धाम महात्म्य में हमें सब सूचना दी है। नवदीप धाम महात्म्य में ठाकुर भक्तिनो जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि किस किस स्थान में चैतन्य महाप्रभु जी की अलग अलग लीला बीती है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको और आगे बढ़ाया, कई स्थानों में खास करके उन स्थानों में जहाँ की भगवान की प्रसिद्ध लीला बीती है, भक्ति सिद्धांत जी ने हर जगह मंदिर खोले हैं। और हम इन धाम में जाते हैं, इन स्थानों में जाते हैं और भगवान की लीलाएं सुनते हैं। जैसे हम लोग नृसिंहपाली गए थे पहले दिन नृसिंहपाली गए, वहाँ में भगवान नरसिंहदेव जी का दर्शन प्राप्त किया। और वो मूर्ति प्रकट हुई थी कब, सतयुग में। और किसको पता था कि उस स्थान के को देवापाली भी कहा जाता था, क्योंकि जो देवता थे वो भी वहाँ निवास कर रहे थे। तो आप सब पिछले एक हफ्ते से भगवान की कथा ही सुनते आए हो, कृष्ण कथा दिन में 2 घंटा 3 घंटा और शाम को भी, और इन स्थानों पर आप पैदल भी चलकर गए। अब इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, ये नहीं कि हम केवल थोड़े समय के लिए उत्साहित रहें और फिर जब लौटेंगे तो भूल जाएंगे सब। जैसे रूपक गोस्वामी जी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्धन संग त्याग सतवृद्धि सर्वी भक्ति प्रसन्नति। ये एक छोटी सी किताब है, रूपक गोस्वामी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया था वृंदावन में जाकर भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। और ब्रज में भी आप जा पाते हो उन स्थानों में जहाँ की भगवान ने लीला प्रकट की थी, और इसके लिए हम ब्रजमंडल परिक्रम के आभारी हैं। और ये साल शायद 25वीं एनिवर्सरी है ब्रजमंडल परिक्रम की, और ब्रजमंडल परिक्रम के द्वारा आप उन स्थानों में जा पाते हो कहाँ, यहाँ की भगवान कृष्ण ने अपनी लीला प्रकट की थी। ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ है, चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से और गोस्वामियों की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु जी ने जब गोस्वामी को भेजा वृंदावन, तो उन्होंने एक तरह से यह आदेश दिया था भक्ति सौंदर्य ग्रंथों की रचना करने के लिए, और दूसरी तरफ से उन स्थानों को खोजो यहाँ की भगवान ने अपनी देव लीला प्रकट की थी। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहयान्यं, और जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु जो हैं सबसे दयालु अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार है। आप जो हो सबसे दयालु अवतार हो, वैसे तो भगवान के अनेक अवतार हैं और हर अवतार में भगवान अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं और अद्भुत लीला भी प्रकट करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी कहा जाता है सबसे दयालु अवतार, नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदाय। अपने खुले रूप से सबको क्या दिया है, कृष्ण प्रेम दिया है। तो ये भाव हम सबका होना चाहिए कि जो कृष्ण प्रेम की का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान हमें आगे भी देना चाहिए। आप लोग कुछ दिन पहले जब परिक्रमा कर रहे थे, तो आप लोग सुराभी कुंज भी गए थे, सुराभी कुंज की लीला याद है? तो सुराभी कुंज में नित्यानंद जी ने निवास किया था। जब ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद को आदेश दिया, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बंगाल में जाओ घर घर और कृष्ण की शिक्षा दो, तो नित्यानंद ने अपना हेडक्वार्टर सुराभी कुंज में बनाया था। और फिर जब ठाकुर भक्ति विनोद जी ने ये नामहत की योजना बनाई, तो उन्होंने भी अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, उसी स्थान में। और ठाकुर भक्ति ने एक जो नामहत का प्रोग्राम बनाया था, उसका भाव क्या था, उसका भाव ये था कि हर व्यक्ति को ये हरि नाम का ज्ञान भी आ जाए। तो जैसे आप भक्ति में बढ़ते हो, वैसे हमें ये प्रचार का उत्साह भी होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जे मध्य लीला में इस प्रकार से कहा, साधु संग नामा कीर्तन भगवत श्रवणम मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवना। के चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें इनका कार्य इनका पालन करना चाहिए। क्या वॉन्ट एसोसिएट विद डिवोटीज, एक ये है हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। और आप लोग जो घरों में भी रहते हो, आप लोग भी बकायदा प्रयास करना चाहिए मंदिर जाने के लिए। तो महाप्रभु का आदेश क्या था, भक्तों के संग में रहो, हरि नाम का उच्चारण करो, भागवतम को सुनो, मथुरा में निवास धाम में निवास करो और भगवान के आचार विग्रह की पूजा करो श्रद्धा के साथ। तो साधु संग सर्व शास्त्र का है, लाभ मत साधु संग सर्वस्वी। तो आप सब इस प्रसिद्ध श्लोक से परिचित हो, जिसमें कहा गया है साधु की संगत का लाभ उठाओ। तो उसका लाभ उठाइए, हफ्ते में एक बार दो बार मंदिर में जाइए, अगर मंगल आरती में जा सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्लास सुनने जाओ, भक्तों के साथ रहो और असत संगत त्यागा ए वैष्णव चरा। भौतिक वादियों की संगत उतना ही प्राप्त करो जितना कि आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। अगर हम आपको ये कहें बिल्कुल दूर रहो भौतिक वादियों की संगत से, ठाक हो गए, भाना हमने नौकरी करनी है, धंधा करना है, स्कूल में जाना है पढ़ने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि केवल भक्तों के साथ नौकरी करेंगे तो शायद भूखा रहना पड़ जाएगा। तो इसलिए इसका असली संदेश यह है, भौतिक भौतिक संगत में उतना ही रहो जितना कि आवश्यक हो। एक रूप से देखा जाए, जब हमारे भक्त प्रचार के लिए भी जाते हैं तो उनको भौतिक भौतिक की संगत में रहना पड़ता है, लेकिन तो आप अपने आप को भौतिक प्रभाव से कैसे बचाओ, इसके लिए अच्छी साधना की आवश्यकता है। इसलिए आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरि नाम को उच्चारण करो और भागवतम और गीता को सुनो, और गीता भागवतम को अगर नहीं सुन सकते हैं तो पढ़ो। तो आप लोग नौ द्वीपों में गए थे और इन नौ द्वीपों के द्वारा जो नवदा भक्ति का ज्ञान है, अलग अलग द्वीप द्वारा अलग अलग संदेश है। और गोडम द्वीप का क्या संदेश है? कीर्तन। और श्रवणम किसका है? सिमंदर देव। तो सिमंदर देव और गोडम द्वीप, श्रवणम और कीर्तन। तो श्रवणम और कीर्तन हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और हम रोज इसकी महिमा सुनते हैं। आप लोग जब परिक्रम में थे, मेरे ख्याल से रोज आप सुन रहे थे इसकी महिमा के विषय में, है ना, रोज। और अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ो, भागवतम हो या गीता हो, आप देखोगे कि 90% तात्पर्य में कहां ना कहां प्रभुपाद इसकी महिमा की चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनो तो आप देखोगे 90% से भी ज्यादा लेक्चर में कहां ना कहां इस विषय पर बल दिया जा रहा है। क्यों? कारण यह है कि हम ढीठ हैं, भूल जाते हैं, और भूलते भी नहीं, परवाह नहीं करते। देवी ऐशक गुनमाई मामा माया, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि माया का विरोध करना बड़ा कठिन है। हम सबका सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी सुविधा दी हमें कि अगर हम माया के साथ का विरोध भी करना चाहें तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। साधना भक्ति का पालन करो, भक्तों की संगत का लाभ उठाओ। आप जो दिल्ली में रहते हो, मायापुर तो आते हो शायद साल में एक दफा या दो दफा, तो आप वृंदावन भी जा सकते हो जो बिल्कुल पड़ोस में है, और आप सबके घर के पास या संत नगर का मंदिर है, या पंजाबी बाग का है, या नोएडा का है, या गाजियाबाद का है, या फरीदाबाद का है, तो आप बड़े आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ में इन ग्रंथों का प्रभुपाद जी ने बड़े प्रयास से इन ग्रंथों को प्रकाशित किया। जैसे आपने सुना था, भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को कहा था, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करो और इनका वितरण करो। और ये कैसे संभव है? भक्तों के प्रयास से। जैसे आप सब भक्तों ने मैराथन में मेहनत करके लगभग दिल्ली में 5 लाख गीता बांटी थी, तो हमारे इस्कॉन के भक्त सारे विश्व में बड़े खुश हैं कि आपके दिल्ली के भक्तों ने मेहनत करके इतनी गीता बांटी है। पर अब हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम हर साल यह करें, है कि नहीं, ये नहीं कि 1 साल 2 साल। और अगर प्रयास करो तो कोई कार्य भी असंभव नहीं है। तो चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, या ब्रह्मचारी, या वानप्रस्थ, या सन्यास, हम सब की साधना जो है ठीक रहनी चाहिए। साधना ठीक रहने का अर्थ है कि हम जो मंदिर में हैं उनके लिए एक रूप से ज्यादा सुविधा है, और जो घरों में रहते हैं वो घर में भी मंदिर जैसा शेड्यूल बना सकते हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं सबके घरों में किसी न किसी प्रकार का ऑल्टर तो है ही है कि नहीं। कईयों के घरों में गोणिता की मूर्तियां हैं। आप में से कितने भक्तों के घरों में मूर्तियां हैं? और जिनके घर में मूर्तियां नहीं हैं तो तस्वीरें हैं। मतलब ये है कि मंदिर का ऑल्टर तो मेरे ख्याल से सबके घर में है, तुलसी भी सबके घर में होगी। तो अच्छी साधना रखो, मंगल आरती घर में करो और गुरु पूजा करो और ध्यान पूर्वक जाप करो। अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करोगे और बकायदा शास्त्र वगैरह पढ़ोगे तो इसके द्वारा आप माया का विरोध कर सकोगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर आप ये पांच चीजों का पालन करोगे तो आप बड़े आसानी से माया का विरोध कर सकते हो। आप भौतिक संसार में देख रहे हो कि जो समाज के क्लेश हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ। जैसे जापान में सुनामी आई, साथ में अर्थक्वेक भी आया। मैं कावी चंद्र महाराज से बात कर रहा था, क्योंकि कावी चंद्र महाराज जापान के जीबीसी हैं और इस्कॉन के मंदिर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कह रहे थे जापानी लोग बड़े घमंड रखते हैं कि हमने इतनी सफलता प्राप्त कर ली, इतने छोटे समय में इतने कारखाने वगैरह बना लिए, अब देखो सब खत्म। तो भौतिक संसार की जो समस्याएं हैं बढ़ती जाएंगी, जैसे भागवत में कहा गया है कदम कदम पर क्या है खतरा। इसलिए जो ध्यान जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि हर कदम पर खतरा है और मुझे हमेशा सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने का अर्थ क्या है? हमेशा भक्ति संबंधित कार्य से जुड़े रहना चाहिए। जैसे चरण के पन्ने ने कहा ईश्वर कृष्ण एक पीना लबया स्वर्ण करना कोती भी, कि हमें एक पल का भी क्या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मेरा आप सब भक्तों से यही निवेदन है कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जो साधु संगत आपको मिली है, जिन जिन स्थानों पर आप गए थे यात्रा में, इनका स्मरण करो, करते रहो। आखिर भगवान ने प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो कई बार भक्त कहते हैं विष्णु स्मरण तो बड़ा मुश्किल है, इतना कठिन नहीं है। खास करके अगर ध्यान पूर्वक श्रवणम कीर्तनम करोगे, और ध्यान पूर्वक जाप का क्या मतलब, जब आप 16 माला जाप करने बैठ रहे हो तो कृपा करके इसी को महत्व देना। ये नहीं कि माला का जाप भी करना है और कई और कार्य भी करने हैं, और आप खुद अनुभव करोगे कि जितने ध्यान से आप जाप करोगे उतनी तेजी के साथ क्या होगा, चेत दर्पण मांडनम। कई बार भक्त कहते हैं कि मुझे तो इतने साल हो गए जाप करते हैं, अभी तक मैं अनर्थ नहीं जा रहे। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया के द्वारा क्या होगा, ये जो अनर्थ है ये कम होकर जाएगा। तो आप भक्तों से यही निवेदन है, आप बार बार ये सुनते हो क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और भौतिक समाज में हम बड़ी सरलता के साथ भूल जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, और जितना सिद्धांत हमारे आचार्य छोड़ गए हैं शायद ही किसी धर्म में आपको प्राप्त होगा। तो और प्रभुपाद जी ने इतनी कठिनाई के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया। जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, प्रकट होने से चार महीने पहले भी जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने अनुवाद का कार्य नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही इच्छा थी कि ज्ञान छोड़ा जाए समाज के उद्धार के लिए। और प्रभुपाद जी कहते थे कि और 10,000 वर्षों तक लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और उसके पश्चात इस पृथ्वी पर केवल अधर्म ही रहेगा, धर्म नहीं रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने वैसे हमें 8 श्लोक दिए हैं जिन्हें हम शिक्षा के नाम से जानते हैं। वैसे देखा जाए हर श्लोक महत्वपूर्ण है, हम ये नहीं कह सकते ये श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे श्लोक से। पर तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जी हमें क्या उपदेश देते हैं, तिनादपि सुनिचेना रूपयोपि सैनक अमानिना मना देना कितने अनि सदा हरि। यही विचार चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक और श्लोकों में भी प्रकट किया है। चैतन्य चरितमृत में कई श्लोक हैं जिनके द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है। और आप इस श्लोक के द्वारा क्या समझते हो कि महाप्रभु हमें कह रहे हैं कितने अनि सदा हरि। अगर आपकी ये इच्छा है कि आप सदा हरि का नाम लेते रहो तो फिर तिनाद भी इसकी आवश्यकता है। और थोड़े पीछे सहनशील होना, अमानी न मना देना, अपने आप सबको आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। और अगर आप इस भावना से जप करोगे तो फिर आप ये जप हमेशा कर सकते, कितना भी सदा हरी। तो हम सबका उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हम जप हमेशा करते रहें, ये नहीं कि केवल 16 माला करें और उसके बाद जप करना पाप है, समझे। हमारा भाव होना चाहिए कि हम कितने दिन सदा हरी सदा भगवान का ही नाम करते रहें। और जैसे इस श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं भागवतम भी पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ो। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब भगवान देखते हैं कि हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी सो लेट मी गिव हिम द अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच ही कैन कम टू मी। कि भगवान कहते हैं ये व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास कर रहा है, मुझे उसे बुद्धि देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। तो आपसे तो यही निवेदन है, इन नियमों का पालन कीजिएगा। आप इनका पहले भी कई बार सुन बैठे हो, पर हमें दृढ़ होकर रूप गोस्वामी ने कहा उत्साह निश्चय दृढ़ होकर हमें भक्ति का पालन करना चाहिए। और अगर दृढ़ होकर प्रयास करेंगे तो अगर ये कहते थे आप एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। आप एक कदम उठाओ भगवान 10 कदम उठाएंगे। जैसे यशोदा माता प्रयास कर रही थी भगवान को बांधने के लिए, कई रस्सियों को जोड़ा, सफल नहीं हुई। तो भगवान ने देखा कि मेरी माता इतना प्रयास कर रही हैं, तो भगवान ने फिर उन्हें सुविधा दी जिसके द्वारा उन्हें बांध सके। तो ये नवोदय परिक्रम एक और माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारी भक्ति को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि आप एक हफ्ते के लिए सुबह से शाम तक श्रवणम कीर्तनम कर रहे हो और कीर्तन भी होता है कई घंटे। आज हम शिवा संगम में गए थे, क्या शिवा संगम में ज्यादा देर तो हम नहीं रुके, इंटरनेशनल पार्टी का सारा प्रवचन हो गया था मुरारी गुप्ता के यहाँ। तो शिव संगम में चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना कीर्तन आंदोलन शुरू किया था और वहां ही छान काजी ने अपने सिपाहियों को भेजा इस हरि नाम को रोकने के लिए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था यहां, कईयों ने उनका विरोध किया। अगर मैं आपसे पूछूं किसने विरोध किया, आप कहोगे मुसलमानों ने। पर आप हैरान हो गए ये सुनकर कि मुसलमानों के अलावा हमारे जो ब्राह्मण थे उस समय उन्होंने भी विरोध किया। इन ब्राह्मणों को चिंता थी कि उनकी आमदन कम हो जाएगी, तो उन्होंने कहा क्या इन माई ने तमाशा शुरू कर दिया है, हमारे धर्म की बेइज्जती हो रही है। तो इन्होंने कहा मुसलमानों को रोको रोको रोको, ये हरी निमाई के संदेश को रोको। तो चंद कादी ने इन बातों के प्रभाव में आकर प्रयास किया। एक मुसलमान था जो रोज आके शिकायत कर रहा चंद कादी को, अगर आप ये निमाई के हरी नाम संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, रोको। तो उस चंद कादी ने कहा तुम रोज आकर मुझे शिकायत करते हो, रोको 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 चंद काजी का रोको निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, पर मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तुम हरे कृष्ण बोल रहे हो। तो उसने कहा यह बात सच है क्या कि जब से मेरा परिचय हुआ ये हरिनाम के साथ, ये हरिनाम जीव से निकलता ही नहीं, तो ये सब हम सबका भाव होना चाहिए क्या कि हरिनाम हमारे जीव से निकले ही नहीं, सारा दिन हरिनाम का उच्चारण करो। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां हरिनाम का उच्चारण नहीं कर सकते तो हरिनाम की महिमा का स्मरण करो। मान लो आप दफ्तर में बैठे हो और वहां काम कर रहे हो, तो दफ्तर में बैठे बैठे जाप तो नहीं कर सके, और मन द्वारा हरिनाम की महिमा का स्मरण कर सकते हो, है कि नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गीता की भूमिका में, ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया था रूपक गोस्वामी को। रूपक गोस्वामी जब वो नवाब हुसैन शाह के राज्य का शासन कर रहे थे तो उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु के साथ जुड़ जाएं। तो उन्हें महाप्रभु को पत्र डाला था कि हमारी इच्छा नहीं है इस नौकरी में रहने के लिए, हम चाहते हैं हम आपके साथ रहें। और महाप्रभु जी की इच्छा थी कि थोड़ी देर और वहां रहें। फिर महाप्रभु ने उदाहरण दिया जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री जिसका प्रेमी हो तो घर में बड़े ध्यान से सेवा करती है पर मन में कुछ और विचार रहता है, तो उसी प्रकार तो प्रभुपाद जी ने इसी उदाहरण का उपयोग किया है गीता की भूमिका में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये उदाहरण देते हुए कि हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सदा हरि नाम की भगवान का स्मरण करते रहें। तो आप लोग फिर खोला बच्चे श्रीधर के हम ही गए थे, याद है खोला बच्चे श्रीधर भौतिक दृष्टि से बड़े गरीब थे, बड़े गरीब, छोटा कमरा था एक रहने के लिए बस, उस कमरे में छत भी नहीं थी कोई। जब बारिश आती थी तो वो दीवार के साथ जुड़ जाते थे कि वो बारिश से वो भीगे नहीं, और पहनने के लिए एक ही फटी धोती 11-6 के साथ, और पूरे घर में एक ही बर्तन था प्याला। और चैतन्य भागवत में कहा गया है वो बर्तन इतना पुराना टूटा हुआ था कि कोई चोर भी उसे छुए नहीं, अगर चोर भी अगर छुए नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या स्थिति होगी। तो जब भी खुले श्रीधर 50% अपनी आमदन का देते थे गंगा की सेवा में, देखो दिन रात हरि नाम करते थे। रात को उनके पड़ोसी सोचते थे ये भूखा है, भूत सता रहे हैं, खुद नहीं साथ सोता हमें भी सोने नहीं दे रहा, है कि नहीं। वैसे वो सोचते थे पर जब भी वो भक्ति कर सका, और जबकि महाप्रभु ने अपने महाप्रकाश रूप प्रकट किया था, अपने 5 प्रसिद्ध भक्तों को निमंत्रण दिया था, जब उन्होंने पूछा खोले बेटे श्रीधर से क्या वर चाहिए, जो ऐश्वर्य चाहिए मैं देने को तैयार हूं, तुम्हें करोड़पति बना देंगे, उन्होंने कहा कि मुझे यही वर दो कि हर जन्म में हमें दुकान में आना सौदा करने के लिए, और हर जन्म में मुझे आपकी सेवा का मौका रहा है। तो ये है असली इच्छा हर भक्त की कि हर जन्म में हम भगवान की सेवा कर सकें। तो जैसे खोला भाई शीला की कथा है, नृसिंहपाली की कथा है, श्रीवास अंगनाथ गए, चांदकाजी वहां गए, सुभद्रा सेन के यहाँ गए, राजा था सतयुग में भी सोच रहा था कि मैं और धन कमाऊं और कमाऊं, और किस प्रकार नारद मुनि जी की संगत से उनका भाव बिल्कुल बदल गया। तो जैसे नारद मुनि ने अपनी संगत देकर भाव बदला, जैसे विदुर ने धृतराष्ट्र को संगत देकर भाव बदला, आप सब ने प्रचार करके दूसरे के भाव को भी बदलना है। करोगे प्रचार पक्का? तो जैसे आपने इंटरनेशनल पार्टी में सुना था, मैं शनिवार को दिल्ली गया था क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहलाता था। तो उनके वाइस चांसलर हमारे बड़े अच्छे भक्त हैं, वो प्रभुपाद जी को भी मिले थे और स्वरूप दामोदर महाराज के भी निकट थे। तो उन्होंने भक्तिनंदा इंस्टीट्यूट कैलकटा के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, और जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया था और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी आई थी, और राष्ट्रपति ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया था। उनके उपदेश में उसकी प्रिंटेड कॉपी है मेरे पास, अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कई स्थानों में कि भक्तों ने वो स्क्रिप्ट लिखा था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट उन्होंने दिया था। और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य जीवन का लक्षण होना चाहिए ये पूछना, कौन हो आप, कहाँ से आ रहे हो। तो वो शर्मा जी ने स्क्रिप्ट में दिया था उन्हें, और उन्होंने प्रभुपाद जी को पुष्पांजलि भी की, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी को फूल भी चढ़ाए। तो मैं सोच रहा था, आप सबका विचार, आप में से इस सभा में दिल्ली के कौन कौन से भक्त जाना तो दें। तो मैं सोच रहा था ये साल प्रभुपाद की जो व्यास पूजा है, ये साल है प्रभुपाद जी का 115th बर्थ एनिवर्सरी, 115। तो मैं सोच रहा था कि हम शाम का प्रोग्राम विज्ञान भवन श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम में करें, और हम हजारों लोगों को बुलाएंगे और राष्ट्रपति को भी बुलाएंगे, क्या ख्याल है? तो मैं आने से पहले वेदव्यास को यह जिम्मेदारी दे आया था कि तुम पता करो विज्ञान भवन में सरकारी प्रतिनिधि जल्दी आते हैं, हम सोच रहे विज्ञान भवन में ये सब व्यास पूजा करने के लिए। सुबह का मंदिरों में करेंगे, शाम का विज्ञान भवन, क्या विचार आपका? और सारे मंदिर और लोगों का निमंत्रण है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अभी रशियन भक्तों को दर्शन देना, रशियन शिष्यों को, क्योंकि वो सब लगभग आधे से ज्यादा कल जा रहे हैं, और क्योंकि मैं परिक्रमा में था एक हफ्ते के लिए, तो इतना समय नहीं मिल रहा था भक्तों को दर्शन देने के लिए। क्या well, they're saying live telecast to the whole world, so 2-minute message in English. Well, in the parikram he was speaking in English, now he's speaking in Hindi, so a little bit. So anyway, our request to all of you is please always chant your rounds nicely, stay in spiritual association and practice humility and be determined to succeed spiritually. Prabhupada has given us all the ammunition we need to fight Maya. We just have to use the ammunition, and we should be serious about spiritual life. और आप सब देख सकते हो ये रशियन और यूरोपियन भक्त भी आपको दिखते हैं, सीरियस दिखते हैं कि नहीं? कई बार हमारे भारतीय लोग कहते हैं, ओ ये विदेशी लोग चाय भी नहीं पीते, तो उनको जब कहते हैं वो सब नियमों का पालन करने में हैरान हो जाते हैं। तो आप सबका जन्म हुआ भारत में, जहाँ बचपन से कृष्ण और राम की महिमा सुनते आए हो, कहीं उनका जन्म हुआ था उन स्थानों में जहाँ कृष्ण राम का उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना, जब बचपन से मांस खा रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट शराब वगैरह, पर हरि नाम की शक्ति से सब कुछ छोड़ दिया और बड़े ऊंचे कोटि के ब्राह्मण बन गए। हमारे कई ये जो रशियन भक्त हैं, क्योंकि इनमें से कम 50% हर एकादशी को निर्जल रखते हैं और इनमें सब पढ़े लिखे हैं। इनमें कई आर्मी ऑफिसर्स हैं, एक जो अचला प्रभु है जो रशियन प्रोग्राम का इंचार्ज था, वो नेवी में कमांडर था, पहले नेवल ऑफिसर्स को भी लाता था मेरे पास दर्शन के लिए, फिर जब नेवी को पता लगा ये बहुत गहराई में जुड़ गया भक्ति में, तो उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा ये बेटर ग्रो भक्ति तो ओके हरे कृष्ण। तो आप सबको सबसे ज्यादा कौन सा स्थान अच्छा लगा? सारे नरसिंह का पानी भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है ना, सारे भक्तों जाते हैं नहीं? बड़ी प्राचीन मूर्ति है, जैसे परिक्रमा में भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी कह रहे थे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे इस समय इस्कॉन को क्या भय है कि जो तीर्थ के स्थान है कई जो खुले हैं, ये कोई किसी गलत आदमी के हाथ नहीं आ जाए। जैसे आप लोग आम घाट गए थे, चैतन्य महाप्रभु जी आम घाट में कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ और भक्त थक गए, बहुत कीर्तन किया 10-12 घंटे लगातार, फिर सबको भूख लगी थी। यहाँ तो आपको भूख लगी तो पिज्जा कॉर्नर में चले जाते हो या गोविंदा रेस्टोरेंट में चले जाते हो, पर उस समय से पिज्जा कॉर्नर नहीं था वहां। तो भक्तों ने कहा महाप्रभु हमें भूख लग रही है, तो महाप्रभु जी ने एक और अद्भुत लीला प्रकट की, एक बीज बो दिया जो मिनटों में आम का पेड़ बन गया और उस पेड़ के द्वारा 200 आम पके आए रोज निकल रहे थे और एक एक आम महाप्रभु जी एक भक्त को बांटते थे और एक आम इतना बड़ा था कि एक आम से पूरा पेट भर जाता था और हर आम इतना मीठा था कि ना उसमें छिलका ना गुठली, और एक साल के लिए आम रोज मिले और फिर पेड़। और आम के विषय में भक्ति सिद्धांत जी की एक कथा है जो मैंने आज सुनाई थी, तो भक्ति सिद्धांत जी 5 साल के थे बिमल प्रसाद, उन्होंने एक आम खा लिया था भोग लगाए बिना, पिता ने तो प्रेम से ही डांटा ये गलत था, तो जिंदगी भर उन्होंने आम नहीं खाया। तो वैसा भाव होना चाहिए हमारे में, अगर हम गलती करें तो प्रयास करना चाहिए फिर ये गलती फिर से नहीं करें, ये नहीं आज गलती की कल सुधार का कल पर गलती फिर सुधार है ना, ठीक है ओके हरे कृष्ण। मैंने सुना कल क्विज में पंजाबी बाग का फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड हू गॉट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, तो व्हाट इज दैट क्विज, व्हाट वाज दैट, हां व्हाट्स दैट, ओ गुड, लास्ट ईयर द रशियन हैड वन इट, last year no I thought the, I don't know, I thought the Russian one. Hare Krishna. So aaj sabse yahi prarthna hai ki aap badi gambhirta se bhakti ke niyamon ka palan kijiyega. Kai baar hum sochte hain kal 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 agle saal to kya bharosa hai ki nahi, आप सोचे कि सुनामी तो जापान में आती है, इंडिया में थोड़ी आती है, यहां भी आ सकती है, आखिर भारत में भी कई भूकंप आए हैं कई बाढ़ आए हैं कि नहीं, हर कदम पर खतरा है ना किसी न किसी माध्यम से। मुझे कोई कह रहा था कि बॉम्बे में ब्रज हरी हमारे बॉम्बे मंदिर के प्रेसिडेंट, कि उसने पढ़ा अखबार में बॉम्बे में 3,000 लोगों को हर महीने स्ट्रोक हो रहा है, स्ट्रोक मतलब बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, 3,000 लोग हर महीने केवल बॉम्बे में, तो आजकल समाज में इतना तनाव है, तो आप सब अच्छी तरह सेवा कीजिए। तो आपको कोई आइडिया अच्छा लगा कि ये साल हम प्रॉपर की व्यास को जब वो ग्रैंड स्केल में करें, विज्ञान भवन या श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम कॉल डिग्नेटरी वगैरह, है ना, आई थिंक वी कैन गेट द प्रेसिडेंट। हाँ, शाम के वक्त सारे मंदिरों को कंबाइन करके एक जगह करें प्रोग्राम, सुबह के प्रोग्राम मंदिरों में, शाम के प्रोग्राम बिग हॉल, विल डू इट। ओके, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, एक अनाउंसमेंट है, जो दिल्ली से भक्त आए हैं सहस्त्र नेत्र प्रभु के ग्रुप में, उनके लिए सूचना है कि कल सुबह 8 बजे बसेस खड़ी हो जाएंगी गदा बिल्डिंग के सामने, और आपसे अनुरोध है कि पहले अपना सामान बसेस में रख दें और उसके बाद आप प्रसाद पाने जाएं, और प्रसाद के तुरंत बाद हम कलकत्ता के लिए प्रस्थान करेंगे। और जिनको कूपन नहीं मिला है, जो लंच में कई लोगों ने कूपन ले लिया था और उसके बाद उन्होंने नहीं लिया, तो कल सुबह उनको कूपन दे दिए जाएंगे, और इस कूपन में कल के लंच का भी कूपन है, वो प्लीज मैनेजर कह रहे थे कि इसको फाड़ कर फेंक दीजिएगा, वो किसी गलत हाथों में चला जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिनको कूपन नहीं मिला है वो कल सुबह ले सकते हैं यही गदा किचन के बाहर से, और बाकी अपना सामान रखने के बाद प्रसाद लेके फिर हम कलकत्ता के लिए प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा।
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की समवेत गौर भक्तवृंद की।